ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम नित्य क्रम के अनुसार चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 16वां श्लोक है। श्लोक बोर्ड पे लिखा है, मेरे पीछे दोहराएंगे। एतत्पदं तज्जगदात्मनः परम सकृत् विवातं सवितुर्यथा प्रभा। यथा सवो जागृति सुप्त शक्तियो द्रव्यक्रिया ज्ञान भिता भ्रमात्यय। एतत् परम तज्जगतात्मनः परम सुकृद् विभातं सवितुर्यथा प्रभा। यथा सवो जागृति सुप्त शक्तियो द्रव्यक्रिया ज्ञान भिदा भ्रमात्यय। एतत् परम तज्जगदात्मनः परम सकृद् विभातं सवितुर्यथा प्रभा। यथा सवो जागृति सुप्त शक्तियो द्रव्यक्रिया ज्ञान विदा ब्रह्मात्यय। एतत् पर जगतात्मनः पर सकृद् विभातं सवितुर्यथा प्रभा। यथा सवो जागृति सुप्त शक्तियो माता जी परम सकृद् विभातं सवितुर्यथा प्रभा। यथा सवो जागृति सुप्त शक्तियो द्रव्यक्रिया ज्ञान भिदा भ्रमत्। एतत् पदं जगदात्मनः पदम् एतत् यह दृश्यमान जगत अदम निवास स्थान वह जगदात्मन श्री भगवान का परम दिव्य सक्रिय कभी कभी विभातम प्रकट होता है सवितु सूर्य के यथा जिस प्रकार प्रभा प्रकाश यथा जिस प्रकार अश्वः इंद्रियां जागृति प्रकट होती है सुप्त निष्क्रिय अवस्था में शक्तयः शक्तियां द्रव्य भौतिक तत्व क्रिया कर्म ज्ञान ज्ञान विदा भ्रम ब्रह्म से उत्पन्न अंतर को अत्यय लुप्त करते हैं। अनुवाद तात्पर्य से श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से भिन्न है उसी प्रकार यह दृश्यमान जगत भी भगवान से भिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जब इंद्रिया चेतन रहती है तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती है, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती है। इस प्रकार सारा दृश्यमान जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। अनुवाद और तात्पर्य में लिखे हैं प्रभुपाद जी कि इससे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत भेदाभेद तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। भगवान एक साथ एक दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में जैसे कहा गया है कि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण है, इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी है। वे इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर स्थित है, चूंकि भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, अतः यह दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनसे अभिन्न है। सूर्य प्रकाश अर्थात धूप सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य में नहीं रहता। जो लोग इस संसार में रह रहे हैं वे भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे उन्हें सशरीर नहीं देख पाते। इस श्लोक का पदम शब्द भगवान के निवास स्थान का सूचक है। इसकी पुष्टि श्री ईशोपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम के रूप में हुई है। भले ही मकान मालिक मकान के कमरे में रह रहा हो, किंतु सारा मकान उसी का होता है। भले ही राजा बहुत बड़े महल के एक कमरे में रहे, किंतु सारा महल उसकी संपत्ति होता है। उसे उस महल को अपना बताने के लिए महल के प्रत्येक कमरे में रहना आवश्यक नहीं है। वह सभी कमरों में भले ही स्वयं उपस्थित न हो, किंतु फिर भी सारा महल उनकी राजसी संपत्ति समझा जाता है। सूर्य प्रकाश प्रकाश है, सूर्य गोलक स्वयं प्रकाश है और सूर्य देवता भी प्रकाशी होते हैं, किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्य देव विवस्वान एक स्वरूप नहीं है, एक साथ एक और भिन्न होने का यही अर्थ है अचिंत भेदाभेद तत्व। सभी ग्रह सूर्य प्रकाश पर निर्भर है और सूर्य के ताप से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष तथा पौधे सूर्य प्रकाश से ही बढ़ते हैं और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण वे सूर्य प्रकाश से अभिन्न हैं। इस प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं सूर्य से अभिन्न है। यह सारा संसार सूर्य पर पूर्णतया निर्भर है क्योंकि यह सूर्य से ही उत्पन्न है और इसके सारे फलों में सूर्य निहित है। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और सारे परिणाम उसी मूल कारण से व्याप्त है। समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्तृत शक्ति समझ लेना चाहिए। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियां की अनुपस्थिति है। जगने पर इंद्रियां पुनः सक्रिय हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट रहता है। जैसे भगवद गीता में इसको भूतवा भूतवा प्रलयते के रूप में भगवान बताते हैं। जब दृश्य जगत का लय हो जाता है तो यह एक प्रकार की निद्रा अवस्था अथवा निष्क्रिय अवस्था कही जाती है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इस तरह प्रकट तथा अप्रकट शब्द केवल भौतिक जगत के लिए व्यवहित होता है। अमज्ञान निमिरंधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं जयि तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नमश्नवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितंश्च। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्कयति गिरिं यत्कृपातमहमन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनदीनतारिणं जयतं सुरतपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदनमोहन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाध शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता हरे कृष्ण। तो श्री नारद मुनि का उपदेश प्रचितस्व और इस उपदेश के दो चार श्लोक हम लोग श्रवण किए हैं। तो इन्हीं श्लोकों में इस जगत के साथ भगवान को एक करके श्री नारद मुनि प्रस्तुत करते हैं। भगवान के साथ जड़ प्रकृति का एक हो नहीं सकता है, लेकिन तिस पर भी ये संसार उन्हीं की शक्ति से बना हुआ है और जितने भी जीव है उनकी परा प्रकृति तटस्थता शक्ति अंश है। तो ये दोनों उनकी शक्ति होने के कारण शक्ति और शक्तिमान में अभेद करते हुए भगवान का इस संसार के साथ एक के बता रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार ही भगवान है या जीव उनकी शक्ति है तो जीव ही भगवान है, ऐसा कभी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक अपना दर्शन जगत को दिया है, उसको कहते अचिंत भेदाभेद तत्व। एक साथ में दोनों वस्तु भगवान से जगत का और जीव का अभेद और भगवान से ही जीव का और भगवान का अभेद। इष्ट सिद्ध स्वामी पर आगे ये वर्णन कर चुके उन तृतीय श्लोक श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय श्लोक की उनकी टीका में वो कहते हैं वस्तु न अंश जीव, वस्तु न शक्ति माया, वस्तु न कार्य जगत। ये मूलभूत वस्तु जो है उनके ये तटस्थ प्रभाव के रूप में ये संसार है। जीव जगत हो या जड़ जगत हो, इसी को भगवान भगवद गीता के सातवें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमको अपना समझ करके एक बात बताता हूं, मैं तुमको वैसा ज्ञान दूंगा कि इन ज्ञान को प्राप्त करके तुम मुझसे समझ सकते, मुझको समझ सकते, या आगे मेरा साक्षात्कार तुम किस प्रकार करेगा उनको मैं पहले बता देता हूं, सुनो। और ऐसा करते हुए भगवान ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया, जैसे भूमि रापण लो वायु, बहुत टाइम से श्लोक चल रहा है, बार बार सभी लोग कोट करते हैं। और यम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विधिम जीव भूताम, ये जो दोनों हैं जड़ जगत और जीव जगत, कहते हैं एतद् योनिनि भूतानि, ये समग्र संसार ये दो प्रकृति से मैं उनको प्रकटित करता हूं, दो शक्तियों से। एक हम और एक हमारा शरीर या पंच भौतिक महास्टॉक को उत्पन्न करने वाली माया, जड़ जगत या जड़ शक्ति, इसी से भगवान इस संसार का सृजन करते हैं। अतः भगवान की शक्ति और भगवान में अभिन्नता रखते हुए वेद ये कहते सर्वम खलुदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से कोई भी वस्तु अभिन्न नहीं है, ब्रह्म का ऐक्य है इस संसार से। और ब्रह्म ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान तो भगवद गीता में कहे कि ब्रह्म का आधार मैं हूं। अतः ये जगत और जीव जगत, जड़ जगत और जीव जगत दोनों उनकी शक्तियां हैं। जैसे पिछले श्लोक में हम लोग देख रहे थे कि यथेव सूर्यात प्रभवंती बारह पुनश्च तस्मिन प्रविशंति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानी न तथा हराव एव गुण प्रवाह। वो कहते हैं कि जिस प्रकार उन वर्षा काल से सूर्य से जल उत्पन्न होता है, सूर्यात प्रभवंती वारह कैसे होता है हम लोग जानते हैं, सूर्य से ही उत्पन्न होता है। और ग्रीष्म काल में जैसे सूर्य उनको सोख लेता है, जल को पी लेता है, यद्यपि वो सूर्य के पास नहीं जाता है और न तो डायरेक्ट सूर्य से पानी का दूध बहता है, लेकिन उनकी शक्ति किरण के प्रभाव के कारण ये सब होता है। तो किरण स्वरूप माया और किरण स्वरूप जीव, तो जड़ जगत और चेतन जगत जिस प्रकार सूर्य से वारी माने जल उत्पन्न होता है और पुनश्च तस्मिन प्रविशन्ति और उसमें प्रवेश कर जाते हैं, कैसे उसको और एक उदाहरण देकर के समझाते, भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि न यथा हराव एव गुण प्रवाह। ये गुण प्रवाह रूपी जो संसार है वो कहते हैं उसी प्रकार उनसे उत्पन्न होता है जिस प्रकार मट्टी, और मट्टी से कुछ घड़े इत्यादि बर्तन बनते हैं, चाहे नाना प्रकार का बर्तन हो, पूर्व में मट्टी था, वर्तमान में मट्टी रहता है और फूट जाने के बाद में भी मट्टी रहे। तो मट्टी जिस प्रकार सत्य वस्तु है उस प्रकार इस संसार में ब्रह्म सत्य वस्तु है, लेकिन यह जगत अनित्य है, सत्य जैसा प्रतीत होता है। उनको ठीक ठीक समझाने के लिए, पूरा ठीक ठीक नहीं, किस इसके लिए दूसरे दो तीन श्लोक का व्याख्या है और भी, लेकिन ये श्लोक जो आज का 15वां श्लोक है या नहीं 16वां श्लोक है, तो उनमें कहते हैं कि तत् पदम तत् जगत आत्मनः परम। मान लीजिए कि कोई ये कहे कि ये भगवान से निकला है तो भगवान से अभिन्न है, तो भगवान क्या उपाधि स्वरूप है जीव की तरह, क्या उनमें भी उपाधि है? सिद्ध साईपाद ये कहते कि ननु हराव गुण प्रवाह इत्युक्ते तद आधारत्वेन सो उपाधिकत्वम उपाधि उपाधिकत्वम हरे है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है ये जगत चाहे जीव हो चाहे ये भौतिक प्रकृति हो, जड़ा शक्ति माया हो, तो वह भगवान से निकली है, तो भगवान का भगवान ही उनका एक आधार है, जैसे अगले श्लोक में बताया। तो क्या भगवान भी सौपाधिक हरि माने जाएंगे? जैसे कुछ लोग गलती से समझते हैं सोपाधिक ब्रह्म, जीव क्या है उपाधि के साथ ब्रह्म है, और उपाधि निवृत्त होने के बाद वो ब्रह्म हो जाएगा, वो उन लोग का ब्रह्म है। क्या वो ब्रह्म है? देखिए कहते हैं कि क्या सोपाधिकत्वम हरे है, क्या भगवान सोपाधिक है? बोलते हैं नहीं। इसी की व्याख्या इस श्लोक में बताई गई है कि जगत चाहे जीव हो जड़ हो भगवान से निकला है, लेकिन भगवान से भिन्न है और अभिन्न भी है। देखिए ये तो अचिंत भेदा भेद है, उनको समझाते सीधे साई बात कहते साथ इति आशंकयाम आह। इसी शंका करके कोई भगवान को सोपाधिक न मान ले, जीव को सोपाधिक ब्रह्म न मान ले, ब्रह्म एक भिन्न वस्तु है, इसके लिए ये कहते एतत इति श्लोक है। एतत पदम, उनका जो पद है वो भौतिक पद कतई, हमारा जो पद है ये भौतिक है, भगवान का उसी प्रकार का नहीं है। कहते हैं कि तत् पदम, तत् जगत आत्मनः परम, जिससे ये जगत निकला है तो वो तो परम पदम, उनका पद या उनका धाम वो सर्वोच्च धाम है, बहुत विशद और बहुत सुंदर सूक्ष्म व्याख्या है। इसको समझने वाला व्यक्ति समझिए, अगर एक बार ये समझ जाए बात, वो कभी भी भजन में अटक नहीं सकता है कहीं पर भी। देखिए उपादान कारण के रूप में जो हमको शरीर मिला है भौतिक प्रकृति का है, और हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हम भगवान बोल रहे हमारी शक्ति है। कैसे स्वतंत्र रूप से व्यक्ति कार्य करेगा है? और ये स्वतंत्र समझना, इसको माया बोलते हैं, इसी को ब्रह्म बोलते हैं, इसी को आगे सिद्ध साई बात समझाते हैं सनई सनई धीरे धीरे। अगर उनको समझना चाहते हैं तो धैर्य के साथ उनको श्रवण करना चाहिए, लेकिन एक बार माइंड में बैठ गया धारावाहिक भजन उनका अटकेगा ही नहीं। क्यों अटक रहा है? संशय के कारण, शंका होगा कि नहीं होगा, ये तो बोल रहे हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा, ये डाउट खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है और यही कर्तव्य मेरे लिए ठीक है। क्या कर्तव्य है उनको आगे बता रहे सिद्ध साई। वो कहते हैं कि देखिए एतद इति ना एतद विष्णु विष्णु तद सर्वशास्त्र प्रसिद्धम, ये तो लिखा गया है सारे शास्त्रों में कि ये जगत विष्णु है, कोई मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि विष्णु की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद करके श्रीधर महाराज बता रहे हैं या सारे शास्त्र बता रहे हैं, क्या ना विष्णु तद सर्व शास्त्र कहते प्रसिद्धम विश्वम, इस विश्व के रूप में विष्णु प्रसिद्ध है। किसके लिए? जड़ बुद्धि लोगों के लिए, जिनके बाद हम जो हमेशा जड़ के जिनका ध्यान है और इस शक्ति के कार्य को इन जगत के कार्य को अचंभित होकर के आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल टॉपिक है, सुन निद्रा परेशान करेगी है? लेकिन धैर्य से श्रवण करना चाहिए इनको। तो कहते परम पदम सर्वो उपाधि निराकरण, यही तो बोल रहे हैं। बोले इसमें जो परम पद शब्द आया, परम पदम एतत तद जगत आत्मना, उन जगत की जो आत्मा है उसका पद क्या है? परम पदम, उनकी पदवी उनका धाम श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। इसी को भगवान बता रहे भगवद गीता में, भगवत गीता में आठवें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं। ये तो व्यक्ता व्यक्त, ये जो बारंबार व्यक्त और अव्यक्त होने वाली एक जो भाव है उनसे एक भिन्न भाव है। कैसे उस श्लोक मेरे मन से आगे के शब्द जा रहे हैं, तस्मात पर तस्मात भावा, कहते हैं वो एक भाव है जो इन नश्वर भाव को नाश होने के बाद भी वो बचा रहता है, वो परम पदम, इसी को परम पद से बोलते हैं। पर तस्मास्तु भावो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनम्, ये जो व्यक्त और अव्यक्त होने वाली प्रकृति है या जीव का जो स्वभाव अभी हुआ है, व्यक्त और अव्यक्त होने वाला स्वभाव वो इनके अहंकार के कारण है। क्यों? मैं सेपरेट हूं, मैं भगवान का नहीं हूं, तो मैं अपने से काम करूंगा, भगवान को बीच में लाने की जरूरत। इवन भक्त भी भगवान को छोड़ करके बोलते हैं अरे ऐसा ही होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए, आपका हिसाब कुछ नहीं है, शांति रखिए, यहां दूसरे का हिसाब चालू है, हमारा हिसाब का क्या वैल्यू है, शास्त्र का हिसाब का वैल्यू है, हम कोई गिनती में ही नहीं है। लेकिन वो अहम जो है ना, वो कॉलर ऊपर करके देता है, यही तो बंधन का कारण है, आगे वर्णन है, समझिए इस श्लोक को बराबर समझिए। वो कहते कि देखिए ये सूचित कर रहे हैं, ये परम पद दो शब्द, परम लास्ट में आया और एतत के बाद पदम आया, तो वो परम पदम जगतात्मन, उन जगदात्मा भगवान का जो परम पद है उसको समझिए, वो है वैकुंठ लोक। अच्छा, वो कहते हैं कि ठीक है, तद उत्पन्नत्वात् तत् पृथक इति अर्थ, कहते ठीक है, उनसे उत्पन्न होकर के इनका एक पृथक अस्तित्व है, इस संसार का जो अस्तित्व है भगवान से पृथक वस्तु के रूप में इसका अस्तित्व है। न तरिक कतम अन्यथा भाति, जब न अपृथक है तो कैसे वो भिन्न दिखाई पड़ता है, अपृथक भगवान से अपृथक है, सर्वत्र भगवान की व्याप्ति। एक दिन एक भक्त ने उदाहरण दिया था, शायद नवदीप प्रभु ने उदाहरण दिया था, वो खंभे से नरसिंह देव उत्पन्न होते हैं, बता दिया भगवान इससे अभिन्न है, विश्व के रूप में भगवान है, उन्होंने सिद्ध किया था। यद्यपि आने वाले सुखों के लिए है, लेकिन उन्होंने उस दिन बता दिया। जैसे वृंदावन चंद्र प्रभु ने अपने क्लास में एक श्लोक से सारे श्लोक का व्याख्या कर दिया था, जन्माद्यस्यतः पहला श्लोक लिया भागवतम का और उन्होंने समापन कर दिया, बोले चार पांच दिन दस दिन बोलना नहीं है क्योंकि आगे के श्लोक वही आता है। बुद्धिमान लोग ऐसे ही बोल देते हैं, भाई आगे सब कुछ समझ लेना, यही है। लेकिन हमारे जैसे बुद्धू को थोड़ा कम समझ है, इसलिए हमको विशद व्याख्या की आवश्यकता है, तब जाकर के बुद्धि में ये बात बैठेगी। तो कहते न तत्पृथक इति अर्थ, जब उनसे पृथक नहीं है तरी कथम अन्यतावादी, तो फिर वो पृथक कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बोले तत्राह सकृत इति, तो तभी बोलते कभी कभी, सकृत का अर्थ कभी कदाचित, वो कभी कभी प्रकट होता है कभी नहीं होता है। किस प्रकार? बोले सकृत आचित, सकृत कदाचित विभातम और सकृत नाभाती, कभी कभी दिखता है। कैसे? बोले गंधर्व नगर सदृश्य, गंधर्व नगर उनको कहते हैं हवा में किला को दिखना, उनको गंधर्व नगर बोलते हैं। वस्तु तो हवा में है,
हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं हवा कुछ नहीं है, हवा है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओ, बड़े बड़े यहां व्यवस्था करो, बड़ी बड़ी कोई भी व्यवस्था रहने दो, हवा। गंधर्व नगर, चूंकि प्रकृति हमेशा प्रलयकालीन विश्व का संहार करने में लगी हुई है, इसलिए यहां व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए तो भक्ति के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, किस लिए? भजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जो श्रील प्रभुपाद महाराज ने दिया व्यवस्था, ये बहुत सुंदर, क्योंकि परमानेंट व्यवस्था है। इस अनित्य संसार को नित्य जीव जब प्राप्त हो जाता है तो उनके लिए कोई ज्यादा दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, यही व्यवस्था की जरूरत। भक्ति कैसे करें बस,
क्योंकि ये तो कहते हैं कि उन गंधर्व नगर की भांति ना गंधर्व नगरवत यथा, इसी को उदाहरण देते हुए कहते हैं संवितुर प्रभा न तत्तो तद भिन्ना यथा। जैसे सूर्य से सूर्य की किरण भिन्न नहीं, लेकिन कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, उसी प्रकार ये विश्व जो है ये प्रकट होता है, क्योंकि उन जल कभी प्रकटित होता है कभी नहीं होता है, ग्रीष्म काल में वही सोख लेता है, उसी प्रकार भूतवा भूतवा भूत ग्राम, ये भूतों का समूह। भूत माने जो हो गया है वह भूत माने भूत नहीं, या भूत समझे कोई बात नहीं, हम भूत जैसे ही है उठपटांग कार्य कर रहे हैं, नहीं करने योग्य कार्य प्रेत करता है, हमारा प्रेत का प्रकृति हो गया है, हमारा स्वभाव प्रकृति के कारण जैसे प्रेत पकड़ा है, अहम 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 हिला करते हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। अरे भाई आप हो क्या कृष्ण के दास? अरे बोले वो बाद में, बाकी अहम। जैसे प्रेत लगता है ना किसी को, वो गलत सलत बातें बताता है और हमेशा गलती ही, और हमेशा इसलिए वो भोपा इत्यादि को बुलाया जाता है, वह जरा भूत निकाल के दीजिए इनको, प्रेत निकाल के दीजिए, ये हिल रहा है, वो गलत सलत बोल रहा है, तो भोपा को बुलाया जाता है, और भोपा फिर झाड़ता है भूत को, वो उतारता है भूत को, लेकिन भूत उतरना नहीं। इसी प्रकार ये सोसाइटी भूत उतारने वाली सोसाइटी, माया का भूत। अब सब कुछ वो लगा है मैं मेरा मेरा मेरा, इसी के कारण अज्ञान उत्पन्न होता है हमारे हृदय में। ये जीव का स्वयं का अज्ञान है, माया क्यों पकड़ेगी जीव को भाई? जीव अज्ञान को पकड़ा हुआ है, माया ने, क्योंकि वो तो भगवान का है। अगर जैसे भगवान का समझ जाए और स्वतंत्र अपना कोई निर्णय न ले, जो निर्णय ले शास्त्रोक्त निर्णय ले, बेस्ट, क्या दिक्कत क्या है? कभी कोई नहीं रोकेगा उनको, जब प्रकृति उनको रोक टोक नहीं करेगी, दूसरे का भूल जाइए, दूसरा व्यक्ति क्या रोक पाएगा उनको, जब प्रकृति स्वयं इतनी प्रभावशाली, प्रकृति का प्रभाव उनके ऊपर नहीं रहेगा। तो ठीक है, वो कहते सवितुर यथा प्रभु, जिस प्रकार सविता का प्रभा सूर्य का प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार, लेकिन कहते जागृता विमिंदिरानं स्फुरंती सुषुप्तो तु सुप्त शक्तियो भवंती। आगे के नीचे के श्लोक में समझा रहे, कहते असवो जागृति सुषुप्त शक्तियो, कहते जब तक जागृत रहते हैं तब तक व्यक्ति की इंद्रिया कार्य करती है, बैर इंद्रिया कर्म इंद्रिया कार्य करती है, मन रूपी इंद्रिया तो सूक्ष्म अवस्था में कार्य, लेकिन सुप्त एक सुप्त अवस्था, तीसरी जो अवस्था है, एक जागृत एक स्वप्न और एक सुषुप्ति, और चतुर्थ तुरी अवस्था वो तो एक भिन्न है, वो मायातीत अवस्था है, लेकिन तीन गुण में रहने वाले व्यक्ति
सदैव ये तीन अवस्था को भोग करते हैं, ये मायागत अवस्था है, तीनों तीन अवस्था। तो कहते हैं कि इंद्रियाणि स्फुरन्ति सुषुप्तो तु सुप्त शक्तियो भवन्ति। जो इंद्रिया जागृत अवस्था में कार्य करती है, मान लीजिए सूक्ष्म इंद्रिय मन सोई हुई अवस्था में कार्य, लेकिन जब वो कोमा में चला जाता है तो मन भी कार्य, इसको सुषुप्ति बोलते हैं। कोई भी इंद्रिय, सारी इंद्रिय ठप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार, क्या उसी प्रकार बोलते, द्रव्य किया ज्ञान भिडा ब्रह्मात्यय, उनका अत्यय होता है। जैसे इंद्रियों का प्रभाव तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार ये जगत का प्रभाव तिरोहित हो जाता है। जब भगवान उनको अपने में समेट लेते हैं और भगवान सो जाते हैं, तो सब कुछ, जैसे सब कुछ अपने अंदर समेट करके भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं, सारा जगत सुप्त कुछ नहीं रहता है, न जीव कोई कार्य करता है, न माया कुछ कार्य करती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन सिद्ध साई पाद ने एक बहुत सुंदर बात बताया है इसमें। वो कहते इति अर्थ कथम भूत है वो असोहरी, वो हरि कैसे है, बोले द्रव्यादि नाम त्रिविधा अहंकार काज्याणाम। देखिए, जीव के साथ भगवान का ऐक्य करके, शक्ति और शक्तिमान को ऐक्य करके सिद्धर स्वामी पाद इसकी व्याख्या करते हैं। कथम भूतम हरि, वो हरि कैसे है, तो वो हरि अपने अंश के रूप में, जीवात्मा के रूप में और तो कुछ नहीं है, वो तत्स्थ शक्ति माया कवलित जीव है, वही तो ईश्वर का रोल कर रहा है इधर। वो भगवान की शक्ति होने के कारण वो भी एक तरीके से छोटे भगवान है, छोटे ईश्वर है, दिक्कत क्या है उसको कहने में। सिद्ध स्वामी पाद लिखते हैं इसी बात को, कदम बुतम तद हरि, वो हरि कैसे है, किस प्रकार है, तो बोलते हैं कि त्रिविधा अहंकार काजा नाम तत् तत् निमित्तस्य वेद ब्रह्मस्य च अत्ययो यस्मात् सः। वो जीव कैसा है, तो बोले अहंकार काजा नाम, जब उनका उनके हृदय में अहंकार कार्यान्वित होता है, हरि का अंश है या हरि के सदृश जीव होते हुए भी वो अहंकार के कारण क्या बोलते हैं, उनको क्रिया में द्रव्य में भ्रम होता है। द्रव्य जो देखते हैं तो व्यक्ति देखता है मेरे भोग के लिए है, अरे भाई स्वयं भोग्य वस्तु है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो भगवान ने उनके भोग के लिए हमारा सर्जन किया है, और अहंकार वश स्वतंत्रता वश हम परतंत्र होते हुए भी हमारी गैर समझ ये होती है कि मैं स्वतंत्र हूं, और इसी के कारण कहते हैं तत् निमित्तस्य, उन निमित्त जो अवस्था हुई है जीव की, तो कहते भेद ब्रह्मस्य च अत्ययो यस्मात् सः। क्या द्रव्यादि नाम भेद, ये जो समान है मेरे लिए होना चाहिए, भैया आप स्वतंत्र नहीं है, आपके लिए कैसे होगा, आप तो भगवान की शक्ति है, तो ये द्रव्य आपके लिए कैसे हो सकता है। इसलिए जो भी द्रव्य है, जो भी वस्तु है, केवल भगवान को समर्पित करके जीव सुखी हो सकता है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि तब जीव अपने स्वभाव में अपनी प्रकृति में होता है। जो पराप्रकृति का अंश है, और पराप्रकृति का अंश होने के नाते उनकी अहर्निश भगवान की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं है, लेकिन उन भेद के कारण, अहंकार भेद के कारण जो ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, तो इस बात का अत्यय हो जाता है कि मैं जीवात्मा हूं या मैं भगवान का अंश हूं, इसका अत्यय हो गया, वो स्वभाव चला गया अहंकार के कारण, फिर भेद ब्रह्म उत्पन्न करता है, वो है अहम मम इति, ये मेरे लिए होना चाहिए, मेरा है या ये मैंने किया है। बाकी प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, लेकिन अहंकार में मूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते,
प्रकृति सब कार्य करती, लेकिन जीव अहंकार बस सोचता है कि मैंने किया। उसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान के द्वारा किया गया है, नहीं, हमारी इच्छा, हम अहंकार के कारण जो इच्छा करते हैं, सेपरेट इच्छा, वो क्या इच्छा है? भगवान से स्वतंत्र इच्छा। भाई भगवान की शक्ति का इच्छा, भगवान की सेवा ही रहती है। राधावन से लेकर के जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, अंतरंगा से लेकर के बहिरंगा, सब कुछ भगवान की सेवा करती है। ये तटस्थता शक्ति नहीं करती है, वो सोच रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसीलिए उन द्रव्य में ब्रह्म हो रहा है, अहंता और ममता द्रव्य आदि में उत्पन्न होता है। इसके सिद्ध संग और इसी प्रकार की वेद एक स्तुति है, 5 मिनट बाकी है, बहुत सुंदर स्तुति वेद करता है। दसम स्कंद के 87वें अध्याय में ये स्तुति है और वो श्रुति स्तुति करती है, वेद स्तुति करता है, यह वेद की ऋचा है, भगवान की स्तुति कहते कहते हैं कि बृहद उपलब्धम एतद अंतवशेष तया। वो कहते हैं कि इस संसार में ब्रह्म के अलावा कोई वस्तु है क्या? कुछ नहीं है, क्योंकि ये संसार बनने से पहले उन बृहद वस्तु जिनमें से सारी वस्तु की उपलब्धि होती है, कैसे बोलते हैं ना, बृहद उपलब्धम एतद अन्यत, ये जो कुछ भी है वो ब्रह्म से उत्पन्न, तो सबसे पहले ब्रह्म था, इस जगत से पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्म से जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो सारी वस्तु तो किसकी होगी? ब्रह्म की होगी। श्रुति कहती है देखो अवशेषतया, जब बाकी बचेगा, जब ये संसार समाप्त हो जाएगा, बाकी बचेगा तो क्या बचेगा? ना ब्रह्म बचेगा, अहम सवेमा वाग्रह। इसी श्लोक श्रुति लोग अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं, वो बता रहे हैं कि यद उदयास्तमयो विकृतम रुधिर अविकृतात्, जिस प्रकार एक माटी के, माटी से बर्तन बनते, उसी प्रकार ये 84 लाख हिरणियों का शरीर माटी तो है और क्या है, भिन्न भिन्न शरीर जो भी है 84 लाख योनियों में, सब मट्टी का बना हुआ है, पृथ्वी का बना हुआ है, उसी प्रकार कहते हैं माटी के बर्तन में माटी ही आएगी और उनके बाद फूटने के बाद बर्तन रहेगा तो माटी ही रहेगी, हैं, और फूटने के बाद माटी ही होगी और क्या होगा, हैं, इसलिए कहते हैं सर्वम कलुदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। कहते हैं तो विकृत मृदि अविकृतात्, लेकिन वो मृदि, वो मट्टी विकृत नहीं होती, बर्तन के रूप में उनका अधिकार होता है, उसी प्रकार सब शरीरों के रूप में भौतिक प्रकृति का अधिकार होता है, और भौतिक अवस्था में जीव का हृदय विकृत होता है अहंकार के रूप में कि मैं करता हूं, कर्ता प्रकृति है, कर्ता है वही ब्रह्म है। इसलिए कहते सर्वत पाणी पादो, ये जो कुछ भी जगत में जितने भी हाथ है, जितने भी पैर है, किसके है? ब्रह्म के। अब पाठ किम तद ब्रह्मम जिज्ञासा करते 13वें अध्याय, आप जाकर के पाठ कर लीजिए, वहां क्या क्या वस्तु किसके 13वें अध्याय में मिल जाएगा। अब हम इस हाथ से काम करेंगे, जिस बुद्धि से सोचेंगे, वो सब कुछ दूसरे का है, हम कैसे अपने आप को पृथक रख सकते हैं? इसलिए कहते हैं, कहते अतः ऋषियो कहते उद्दुष त्वयि मनोवचना चरितम, इसलिए जो ऋषि बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहते हैं अपने मन वचन और अपनी काया से आचरितम, क्या आचरण करते हैं? बोले एक ही आचरण करते हैं, वो अपने वचनों, अपने मन से आपका चिंतन करते हैं, वही ब्रह्म का चिंतन ऋषि लोग करते हैं, अपनी वाणी से उन ब्रह्म को समझाने की चेष्टा करते हैं और अपना कार्य उन ब्रह्म को समर्पित कार्य करते हैं, इनसे पृथक कार्य नहीं करते हैं। कतम यतप कहते भवंती भूमि दत्त पदानि विनाम, कहते हैं व्यक्ति कहीं भी पैर रखे, चाहे ईंट के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रखे,
पलंग के ऊपर रखे, कहीं भी रखे, होता तो पृथ्वी के ऊपर ना। ये सब वस्तु जब ब्रह्म है तो होगा तो उसी से, तो अहंकार बीच में कैसे उत्पन्न होगा कि मैंने किया? वो हमारे अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। अगर इतनी छोटी सी बात समझ में आ जाए कि सारी वस्तु, सारी बुद्धि, सब कुछ मेरे पास जो कुछ भी है, तो कितना भगवान का उपकार मानेगा व्यक्ति है कि सब कुछ जो दिया है भगवान ने दिया है। इसलिए भगवान आपको समर्पित, एकादश स्कंद में जो मुनिगण बता रहे हैं, नव योगेंद्र इसी बात को तो बता रहे हैं कि ये सारा जगत आप ही तो है। एक बीच वाली अवस्था है, ज्ञानी और प्रेमी के बीच वाली एक अवस्था में सनत कुमार इत्यादि आते हैं, जिन लोग का निवास ब्रह्मलोक में है। आज भी ब्रह्मलोक में ये लोग निवास करते हैं, कभी कभी वैकुंठ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वहां परमानेंट व्यवस्था उन लोग के लिए नहीं है। क्योंकि जगत के साथ भगवान का एक के समझने वाला जो ज्ञान है, वो लोग ध्यान में ही भगवान को देखते हैं ज्यादातर। कभी कभी वैकुंठ जाते हैं, आकृष्ट होते हैं, लेकिन वापस वो लोग अपने स्थान में आ जाते हैं। लेकिन प्रेम जो कृष्ण से करते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति गोपीजन, सर्वत्र वहां उनको कृष्ण स्फूर्ति होता है। जहां देखती है वहां उन जड़ात्मक जगत को नहीं देखती, वो कृष्णात्मक जगत को देखती है। इसी गोपीजन कभी कभी जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे तो गोपीजन बोलती है कि भाई आप यशोदा सुत के रूप में आए हैं, बाकी आप है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा किसी के नहीं है। उस प्रकार आप भी किसी से प्रेम नहीं करते, हम कितना भी प्रेम करते हैं लेकिन आप हमारे प्रेमी नहीं है, जाइए। भगवान को भी डांटती है, है? देखिए इसलिए परमात्मवाद, इसलिए ज्ञान के ऊपर एक विज्ञानमय अंश जो होता है, और उनके द्वारा जो लोग सिद्ध हुए हैं वो लोग से ऊपर प्रेमी हैं, उनके ऊपर प्रेमी जन है। ये नव योगेंद्र जो भी है, उन जगत आत्मा बोलते हैं भगवान को, लेकिन वो भगवान को प्रेम करने वाला की अवस्था उसके भी ऊपर है। बृहद भागवतम पाठ कीजिए, आपको बहुत सुंदर तरीके से बात मालूम हो जाएगी, ना मैं 5 मिनट में सब बता नहीं सकता। कुल मिलाकर के जो श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा व्यवस्था मिला है इन भागवत को समझने की, जो हमारे पास थोड़ी बहुत इन कक्षाओं में बैठने की योग्यता जब आई है ना, तो उनका पूरा पूरा उपयोग करते हुए उन कथा श्रवण ध्यान से करना चाहिए, और इसी से सारी सूक्ष्म बातें मिलती जाएगी और हमारे हृदय में श्रद्धा भगवान के प्रति दृढ़ होती जाएगी। और एक दिन आएगा वो व्यवसायित्मी का बुद्धि प्राप्त कर लेंगे, जो एक ही गुरु नंदन एक ही प्रकार की है कि भगवान ही मेरे हैं, और इसी भगवान का इन शक्तियों के रूप में जीव जगत और जड़ जगत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रश्न लिया नहीं जाएगा, समय हो गया है, मिलेंगे, मैं मिलूंगा, बाकी होगा नहीं क्योंकि अतिक्रमण कर लिया है, 9:04 हुआ है। गंधराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, दाई गौर हरि ब्रह्मानंद ने।